भारत की राजनीति में बरसों तक वर्चस्व रखने वाली कांग्रेस पार्टी इन दिनों लगातार कमजोर होती जा रही है। केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के आने के बाद कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है। उसके कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। देश में भाजपा विरोध का चेहरा बन चुके कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस पार्टी ने प्रवेश दिया है। मंगलवार को कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है।
सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ।
वामपंथी विचारधारा के कन्हैया कुमार के कांग्रेस प्रवेश पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा कन्हैया कुमार को देश विरोधी बताती रही है। कन्हैया कुमार का संबंध बिहार से है, बिहार में ही सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि राज्य में कन्हैया का कोई प्रभाव नहीं है,
उनका यहाँ के जमीन पे कुछ नहीं। बिहार के बाहर जरूर उन्होंने राजनीति की है, एक चुनाव आके यहाँ लड़े हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से राजनीतिक धरातल नहीं बनता है, राजनीतिक समर्थक नहीं बनते हैं। उनके जिस विचारधारा के साथ वो चुनाव लड़े थे, यदि उनको ताकत मिली होती तो आज वो उस विचारधारा में होते, आज उससे अलग क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उस विचारधारा को भी वो कमजोर समझ रहे हैं और वह भी कमजोर हुए हैं। तो और अब जिस नाव की सवारी करने वो जा रहे हैं वो तो नाव और डूबने वाली है।
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार 5 साल पहले तब चर्चा में आए थे जब विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगे थे। भाजपा का आरोप है कि यह नारे कन्हैया कुमार की उपस्थिति में ही लगे थे, जबकि कन्हैया इससे इनकार करते हैं। इसी को याद करते हुए बिहार सरकार के एक अन्य मंत्री नितिन नवीन कहते हैं,
जो नैया ऐसे ही डूबने वाली है, उसमें कोई सफर कर रहा है तो वो अपना भविष्य समझे कि उसका भविष्य क्या होने वाला है, और जो व्यक्ति सफर करने जा रहा है उस व्यक्ति का इतिहास क्या रहा है। जो भारत को के मुर्देबाद के नारे लगाता हो उसको कांग्रेस अगर पुरस्कृत कर रही है तो कांग्रेस के अंतिम दिन और अंतिम समय तो आ ही गया है। उनका जो शुरुआत है, जो भारत के मुर्देबाद के नारे से जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति हो उसको कांग्रेस अगर पुरस्कृत कर रही है तो ये कांग्रेस इटालियन कांग्रेस है। ये कांग्रेस जो आई इसके नाम से जानी जाती थी वो इंडिया की कांग्रेस नहीं, ये इटालियन कांग्रेस।
युवा नेताओं की खोज कर रही कांग्रेस पार्टी में इन दिनों हलचल तेज है। खासतौर पर पंजाब की सत्ता पर काबिज यह पार्टी वहां पनपे असंतोष को शांत नहीं कर पा रही है। कुछ महीने पहले ही अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से त्याग पत्र देकर असंतोष को और गहरा दिया है। उनके समर्थन में एक मंत्री ने भी अपना त्याग पत्र दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने स्तर पर इस मामले को सुलझाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को लगता है कि पार्टी इस चुनौती से निपट लेगी।
हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज, हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ हम पार्टी हाईकमांड से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक काबिल, एक अच्छा लीडर हमारे को पंजाब में मिला है, इनको, इनकी आप जो ग्रीवेंसेज हैं उसको रिड्रेस करें। अगर इनके कुछ इश्यूज हैं, कोई ऐसी बात नहीं है पॉलिटिक्स में जो मानी नहीं जा सकती या जिस चीज का कोई सलूशन नहीं है।
सिद्धू के इस्तीफे के बाद विरोधियों ने उन पर जमकर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को अस्थिर आदमी बताते हुए सीमावर्ती राज्य पंजाब के लिए अनफिट बताया। वहीं अकाली दल के सुखबीर बादल ने सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताकर कहा कि उनका पंजाब से जाना ही ठीक है।
नवजोत सिद्धू है आप मिसगाइडेड मिसाइल है, एदा पता नहीं कीदे तो डिगूगा ते किनू मारूगा।
पंजाब के बाद बात पड़ोसी राज्य हरियाणा की, जहां सरकार ने किसानों की नाराजगी को दूर करने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी के तहत राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसी क्रम में अब 1 अक्टूबर से बाजरा और धान की खरीद शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस बार सिर्फ हरियाणा के किसानों को ही फायदा पहुंचाया जाएगा।
जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो जमीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी और ये राशि ऐसे सब किसानों को 7 अक्टूबर के आसपास भेज दी जाएगी। इस प्रकार से ये लाभ केवल हरियाणा के किसानों को मिलेगा, इसके अतिरिक्त इसका लाभ और कोई नहीं उठा पाएंगे।
हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी नाराज हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध किसान कई महीनों से कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि आंदोलन अभी ठंडा नहीं पड़ा है।
ये सारे जालसाज लोग हैं भाई, सरकार में जो बैठे इनको जाना होगा।
बहरहाल भारत की राजनीति में किसानों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बड़ी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।